हमारे आपके बीच में भक्त वेदांत नारायण जी महाराज, उपस्थित विद्वतगण और भाग्यशाली भाइयों और बहनों, आज का यह अनुपम दिन जो अतुलनीय है, इसकी तुलना दूसरे दिन कर नहीं सकते। 307 या 63 दिनों में यह रात्रि रस रात्रि है। जिस रात्रि में रसो वैसा रसम एव लब्धा अयम आनंदी भवती, यह जीव जब तक रस रूप श्री कृष्ण का दर्शन, श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन, श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन नहीं करता, तब तक इसके हृदय में आनंद का आविर्भाव नहीं हो सकता। आनंद की पराकाष्ठा श्री कृष्ण ही। वैसे भगवान के जो अवतार होते हैं वो सभी वंदनीय हैं, सभी अभिनंदनीय हैं और सभी प्रशंसनीय हैं। चाहे वो वामनावतार हो, नृसिंहावतार हो या कोई भी अवतार हो, अवतार का सीधा और सरल अर्थ है ऊपर से उतरना। अवतरणम नाम अवतार। हम और आप ऊंचे चढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं कि हम ऊंचे चढ़े और भगवान कृपा करके हमारे ऊपर नीचे उतरते हैं। भगवान का उतरना और हमारा चढ़ना, ये जीव और ईश्वर में भेद है। किसी भी योनि में भगवान आ जाए, चाहे कच्छप अवतार हो चाहे मत्स्यावतार हो, उपनिषद भगवान कहते हैं न जायसा कर्मणा जायान भवति, न कनीयेन कर्मणा कनीयान भवति। कर्म की उच्चता और नीचता या योनि की उच्चता और नीचता का प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ता। ईश्वर तो सूकर के रूप में आएंगे तो भी अभिवंदनीय है, और कछुआ होकर आ जाएंगे तो भी वंदनीय है। ये अवतार की विशेषता यह है। अवतार दो प्रकार का होता है, हमारी नाग पत्नियां तो दशम स्कंद श्रीमद् भागवत में कहती हैं कि न्यायो ही दंडा कृत किल विशेषमिन तवावतार खल निग्रह। हे प्रभु, आपने जो हमारे पति नाग को दंड दिया है वो न्यायो ही दंडा, न्यायोचित है, क्योंकि आपका जो अवतार है वो खलों को निग्रह शांत करने के लिए है। क्योंकि खलों को दंड तो यमराज देता है, कृष्ण को क्यों आना पड़ा? तो कहते यमराज देता है, ये सत्य है, पर मरने के बाद देता है। मरने के बाद जब यमपुरी में जाता है जीव, तब यमराज दंड देता है, परंतु जब तक वो जिएगा तभी तक उपद्रव करने लगेगा, तो उसको दंड देने के लिए तवा बता रहा खल निग्रह। भगवान का अवतार दो होते हैं, एक क्रियावतार और एक ज्ञानावतार। कहीं तो भगवान केवल दुष्टों का संहार करने के लिए ही उतरते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से जब प्रह्लाद अतिपीड़ित हुआ तो नृसिंहावतार। उपदेश नहीं करते नृसिंह जी, वराह भगवान उपदेश नहीं करते, क्रियावतार। जो क्रियावतार के लिए आता है वो ज्ञान का उपदेश नहीं देता और निश्चस्तनी नित्य मंगलम अपने धाम में चला जाता है। और जो ज्ञानावतार होता है वो ज्ञान का उपदेश करता है, दुष्टों का संघार नहीं करता। जैसे दत्तात्रेय भगवान, जैसे व्यास जी भगवान, कपिल जी भगवान उपदेश दे करते थे, वो ज्ञानावतार है। हमारे कृष्ण की क्या विशेषता है जिनका आज अजन्मा का जन्म हुआ? वैसे तो गीता जी में लिखा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेत तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। भगवान श्री कृष्ण का जन्म और भगवान कृष्ण की वही सर्व माने लीलाएं, ये सब दिव्य माने अलौकिक है। ऐसा जो मानता है वह भी भगवान के योग से युक्त हो जाता है। इतनी मान्यता ही हमारे जीवन में कल्याण के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रपंचायत भय के संदर्भ में बताया, नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृप। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगव जीवों के कल्याण के लिए भगवान का अवतार होता है, वो अवतार श्री कृष्ण है। इनमें पूर्ण परिपूर्ण क्यों है ये अवतार? कि इसमें विशेषता यह है, आपने ज्ञानावतार स्वीकार किया और क्रियावतार भी स्वीकार किया। आपके सभी विग्रह में छह दिन के थे तो छह कोट की पुतला को ही मार डाला। आप 108 दिन के हुए, आपने शकटासुर का संहार किया। आप एक वर्ष के हुए तो आपने कृणावर्त को मारा और वृज में वकासुर वत्सासुर अनेक दैत्यों का संहार किया। मथुरा में आए तो कंस का संहार किया, रजक का संहार किया और द्वारका में गए तो वहां भी संहार किया। संहार में आप अनुपम हैं, ऐसा किसी को ने भी नहीं किया। इसलिए तो आप क्रिया बता रहे हैं। क्रिया के द्वारा जो अशांति दो प्रकार से होती है, बाह्य अशांति और आंतरिक अशांति। बाह्य जब उग्रवादी लोग बहुत बढ़ जाते हैं और दुष्ट लोगों से प्रजा पीड़ित होती है तो प्रभु ने अत्याचारियों को शमन और दमन करने के लिए भगवान का क्रिया अवतार होता है। श्री कृष्ण ने बाह्य दुष्टों को शमन करके बाह्य शांति की स्थापना की और एक आंतरिक शांति होती है। अंतर में हमारे में काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्षा दम्भ और पाखंडों ने हृदय को दूषित बना दिया है। दूषित हृदय को शांत करने के लिए भगवान का ज्ञानावतार होता है। ज्ञान के द्वारा जब हम हृदय में शांति स्थापित करते हैं और कामादि दोषों का निराकरण करते हैं। श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं, एक उपदेश तो श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी बराबरी कोई उपदेश कर नहीं सकता, और श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद। ऐसा ज्ञान का अनुपम भंडार भरा हमारे केशव श्री कृष्ण प्रभु कितने दयालु हैं। तो उनमें क्रियावतारत्व भी है, ज्ञानावतारत्व भी है, दुष्टों को मारना भी जानते हैं और हृदय के दुष्टों का संहार करना भी जानते हैं। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की, ऐसे कृष्ण का आज जन्म, भक्त लोग उनके पर्व का अनुमोदन करते हैं और आज की रस रात्रि को नमन करते हुए आनंद विभोर हो जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज पूर्ण अवतार कौन सा? ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंध के सातवें अध्याय में कहा, नारद जिसमें पूर्ण ज्ञान शक्ति हो वो पूर्णावतार। जिसमें पूर्ण क्रिया शक्ति हो वो पूर्णावतार, जिसमें पूर्ण इच्छा शक्ति हो वो पूर्णावतार। ज्ञान की पूर्णता, क्रिया की पूर्णता और इच्छा की पूर्णता होने पर ही वो पूर्णावतार माना जाता है। कृष्ण, कृष्ण क्या है इसके दो भाग करो, कृष्ण और नौ, पूर्ण हो गया है नौ को, कृष्ण और नौ दो शब्दों को जानने के बाद कृष्ण पदार्थ अपने आप अवगत हो जाता है। कृष्ण माने सत्य, नौ माने आनंद, जो आनंद ही सदानंद है, सदानंद का नाम ही श्री कृष्ण है। वह कृष्ण ही स आत्मानं द्वेधा अपापयत्, पतिश्च पत्नी च भवता। सरस्वती उपनिषद कहती है कि आनंद के दो भाग हुए, आधे का नाम श्री ब्रह्मानंदनी किशोरी राधा रानी हो गया और आधे का नाम कृष्ण हो गया। अब कृष्ण में आनंद है कि राधा में आनंद है, दोनों ही आनंद है, एक दूसरे के सापेक्ष है। कृष्ण को राधा की अपेक्षा है, राधा को कृष्ण की अपेक्षा है। राधा कृष्ण का मिलन ही जो है वो रसायनम समूह रास है। तो सज्जनों, श्री कृष्ण एक ऐसा आनंद है, अथवा कोई कोई विद्वान ऐसा भी कहते हैं कर्षयत भक्तान इति कृष्ण, अपनी तरफ खींच ले वाले। कृष्ण का रंग लग जाए तुम्हारा दूसरा रंग चलता नहीं। हमारे प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकशिपु ने, भाई तुझे कुछ नवग्रहों की दशा लग गई है क्या? राहु केतु कौन सा ग्रह लगा है? प्रहलाद जी ने कहा दसवां ग्रह लगा है मुझको। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने मेरी मन को पकड़ लिया है। यही बात सुखदेव जी ने परीक्षित से गंगा के किनारे कही, पर निष्ठतो विनयी गुण्य उत्तम श्लोक लीलाया गृहित चेता राजर से आख्यानम जब जीतवान। मैं तो निराकार ब्रह्म का उपासक और उसमें भी निश्चित नहीं पर निश्चित था, परंतु भगवान की दिव्य लीलाओं ने मुझे पकड़ लिया। तो भगवान की लीलाओं ने सुखदेव जी को पकड़ा संकीर्तन के लिए, और प्रहलाद को निर्भय बनाने के लिए भगवान ने उन्हें पकड़ लिया। कृष्ण ये ग्रह है, ये जिस पर अपार कृपा होती है भगवान उसको अपने हाथ से पकड़ लें। हम भगवान को पकड़ें ये दूसरा है, और भगवान हमको पकड़े ये दूसरा। तो एक श्लोक कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ब्रह्मा जी के विचार हैं कृष्ण के प्रति कि तो के न जीव हरणम यदुलोकिकायावास कस्य च पदा शकटोपवृत्तः यदृङ्गतान्तर्गते न दिवृशोर वही। उच्चारण में वा बोला जाता है, पदस्थेद में वही निकाला जाता है। यद रिंगतांतरगते न दिवृशोर वही उन्मूलनम पितरथार्जुन योर न भाव्यम। कृष्ण की पर ब्रह्मता सिद्ध करने के लिए नारद जैसे श्रोता को ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे हैं। आपकी ज्ञान शक्ति की एक दर्शन कीजिए, वाकी झाकी कीजिए कि पूछ आज के दिन वृज में श्री वल्लभाचार्य जी के मतानुसार 16,000 बालकों का जन्म हुआ, और उन 16,000 बालकों को मार के और उनका प्राण अपने स्तनों में भर के ये पूतना आई थी। जगत को उल्लू बनाने वाली उल्लू की का, जिसको भगवान ने उल्लू बना दिया। तो और दूसरा नाम न लेकर के कहा तो केला, उठाने असमर्थ हो बाला तो कहा, जो अपने पैरों से उठ नहीं सकता है उस बालक को तोक कहते। उस तोक अवस्था में ही जीवा नाम हरणम, आचार चरण कहते हैं जीव चरणम नहीं, जीवा नाम हरणम जीव हरणम, उन 16,000 बालकों को अपने हृदय में ले लिया और उन्हीं को माखन खिलाया और उन्हीं को मृतिका भक्षण में माटी खिलाकर शुद्ध किया और 16,000 इनके स्त्री रूप जो कुमारिकाओं के थे उनमें स्थापन कर आगे रास के लिए चातुर्य प्रदान किया। तो ये ज्ञान शक्ति है कि जीव कहाँ है, उनको कैसे निकालना है। एक बात पूरी हुई। दूसरी आइए, त्रैमासिक कक्षा जब 3 महीना के हुए, 3 महीना से 4वें महीना में प्रवेश किया तो आपने पदा कोमल चरण से 1,000 मन सामान उठाने वाला जो सबसे बड़ा गाढ़ा था, जीवन का गाढ़ा 108 दानों पर यदि भगवान के नाम का संस्मरण रोज करोगे तो जीवन का गाढ़ा सुख से चलेगा और नहीं तो भगवान लात मार के गाढ़े को औंधा फेंक देंगे। जब श्री कृष्ण पलंगिया पर सो रहे थे और ये माखन मिश्री का रस भरा था, उस समय वल्लभाचार्य जी कहते हैं, नहीं कृष्ण रसो परी रसांतरम स्थापन शक्यते, भगवत रस के ऊपर कोई भी रस टिक नहीं सकता, इसलिए लौकिक रसों को श्री कृष्ण ने लात मार के गाढ़ा को अपवृत्ता। अपवृत्ता का अर्थ लोग समझे तो बड़ा आनंद आ गया। अपवृत्त माने गाढ़ा उठा और उठ करके औंधा हुआ, औंधा होके गिरा, इसका नाम है अपवृत्ता। इतनी ताकत क्रिया शक्ति दजरे गोपा है। बहुत लोग तो सिद्धा ही नहीं करते हैं, कोमल चरण से कैसे हो सकता है ये ईश्वर। अब तीसरी बात और कहकर मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। यद रिंगता रिंगण लीला, जब भगवान ने घोंटुओं से चले तो दिविश प्रसोर हुआ आकाश चुम्बी, ये यमला और जुन के दो वृक्ष थे। इन्होंने 3 पुण्य किए थे। लोग कहते कि नन्नस्य गृहं क्वास्ति, नंद बाबा का घर कहाँ है, तो कहे यस्य द्वारी यमलार्जुनो विद्येते तद् गृहं नन्दस्य, जिसके दरवाजे पर यमलार्जुन से महान वृक्ष खड़े हों वही नंद बाबा का घर है। नंद के गृह के परचायक एक पड़ी, दूसरा हजारों की संख्या में इसकी छाया में गाय बैठा करती, ये दूसरा पड़ी। तीसरा, नारद के उपदेश से कृष्ण जन्म की वो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, कब कृष्ण जन्म हो और हमारी यह योनि समाप्त हो। तो प्रतीक्षा सबसे बड़ा भक्ति है। हम भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा परमं कृपा। ये भगवान की, अरे गाड़ी वाला गाड़ी की प्रतीक्षा करता है, मोटर वाला मोटर की प्रतीक्षा करता है, हम तो कदा नंदात्मज श्रेषु कृपा दृष्टि विधास्यति प्रतीक्षादी मनस्तम सहेन्द्रिय। श्री हरराय जी कहते हैं आनंदात्मज भगवान हम पर कब कृपा करेंगे, इस प्रतीक्षा से ही हमारे मन और इंद्रियां थक गई हैं। थक गई हैं का भाव ये है कि वो कुमार्ग पर अब जाने में समर्थ नहीं रही। ये प्रतीक्षा का परम फल है। कुछ प्रतीक्षा मत करो, भगवान की कृपा का प्रतीक्षा करो। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाण, मैंने प्रतीक्षमाण भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करो। तो जब उन्हें रंगन किया तो इन दोनों वृक्षों के बीच में होके निकलिया। तो देखिए, साक्षात कृष्ण का और वृक्षों का कोई संबंध नहीं। जरा विचार करना, आप भगवान का और वृक्षों का कोई स्पर्श नहीं हुआ। भगवान से स्पर्श करने वाली जो रस्सी थी, जिस रस्सी से भगवान को बांधा था, उसका भी वृक्षों का कोई संबंध नहीं। और रस्सी से बंधी हुई जो उखल थी, उस उखल ने उन वृक्षों का कल्याण कर डाला। इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान का संबंधी का भी जो संबंधी होगा वो जन कल्याण में सक्षम होगा। भगवत संबंधी डोरी और डोरी संबंधी उखल, इसलिए भगवान के संबंधी जो परम भक्त थे उनके संबंधी साक्षात भक्त वेदांत जी आज यहाँ की जनता का कल्याण करने का ही संकल्प किया। तो सज्जनों, इस तरह उस उन्मूलन सर्वार्जुनों में सर्वतो बलवती ही अन्यथानुपत्ति, अन्यथानुपत्ति प्रमाण के द्वारा ये तीनों कार्य नहीं हो सकते थे। अतः इन तीनों कार्यों को करने से श्री कृष्ण परम ब्रह्म है और उनका आज जन्म है, अवतारी है, ये अवतार नहीं है। ये पूर्णावतार अवतारी को प्रणाम करते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ।
तो वो जपेदवा ध्याय देवा भी